USAID, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अर्पा रेडियो की प्रस्तुति
हिंसा को नो
समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे।
महिलाएं अपने आप को असहाय न समझें। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो
महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम
हिंसा को नो।
अर्पा रेडियो सुनैया जम्मो श्रोता संगवारी मन ला मातृका औ
संज्ञा के
जय जोहार राम राम। और एक फेर हमन आगे हन आप मन करा गोठ बात करे बर लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम मा जेखर नाव है
हिंसा को नो।
अब तो आप मन भी हमारे इंतजार करत हो ना कि कब हम आही और आप मन ला हिंसा के बारे में और नवा नवा बात बताही और हिंसा के खिलाफ आप मन ला जागरूक कर सकन। आगे बढ़े के पहली मैं अपन संगवारी मनला ए सुरता कराना चाहत हूँ कि अभी तक हमन हिंसा के एपिसोड में कौन कौन विषय में बात करे हैं। तोला याद हवे?
बिल्कुल काबर नहीं याद हुई मोला। देखा हमन लिंग और जेंडर के बीच में अंतर के बारे में बात करे हन। घरेलू हिंसा का होते और ओखर कतका प्रकार होते। सार्वजनिक स्थान में उत्पीड़न घरेलू हिंसा ले पीड़ित महिला के कानूनी अधिकार कोनो महिला के ऊपर अगर हिंसा होते तो वह कैसे अपन केस दर्ज करवा सकत है ये सब के बारे में जाने हन। और हमर पिछला एपिसोड में जाने हन कि कैसे मितानिन दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक संगे संग पंचायत था पीड़ित महिला के मदद कर सकते। अब ये सब तो हो गए पिछला एपिसोड के बाद। आज हमन कौन विषय में बात करबो एला तुमन बता।
अरे वाह तोला तो सबो विषय याद है कि हमन कौन कौन विषय में बात करे हन। तो आज का एपिसोड शुरू करे के पहली मैं तुमन ला एक ठन कहानी सुनात हूँ।
संगवारी मन के संग संग मुँह ला बताई।
आज बिहन्ना ऑफिस आए के पहली मोर कने एक ठन महिला के फोन आए रहिस।
अच्छा।
वो अपन नाम गंगा बताईस और अपन उम्र बताईस कि वो 56 साल के है।
अच्छा।
और हिंसा के बारे में घलो बताए रहिस।
56 साल के महिला के ऊपर हिंसा?
अरे नहीं ओखर ऊपर हिंसा नहीं होत रहीस
तो
ओ अपन बेटी पर पूछत रहीस।
अच्छा।
पर का है ना कि कोनो भी उम्र के महिला ऊपर हिंसा हो सकत है और ओ हा कोनो भी उम्र मा मदद ले सकत है।
अच्छा ये बात तो मैं जानते नहीं रहे हूँ। अब ये तो बतावा कि आखिर उकर बेटी के ऊपर का हिंसा होत रही से?
ओहा अपन बेटी के शादी अपन पास वाले गांव में की रही।
अच्छा।
एक साल तो बने रही से।
हाँ।
फिर उकर बेटी के एक ठन बेटी भी हो गए सब चीज बने चलत रही।
हाँ।
फिर एक दिन का हुईस उकर पति ला काम से निकाल दिए गए।
अच्छा।
काम से निकाले के बाद उकर पति अपन पत्नी ले पैसा लेना चालू कर दिस। और पैसा नहीं देने पर ओखर संग मारपीट करना शुरू कर दिस। कुछ दिन तो गंगा की बेटी अपन माई के घर ले पैसा लेत रहीस। मारपीट और मानसिक पीड़ा ज्यादा ही छोगिस। तब एक दिन गंगा की बेटी सबो बात ला अपन अम्मा यानी गंगा ला बताईस।
अच्छा ये तो बड़ दुख के बात है। अभी भी हमर समाज में महिला मन के ऊपर हिंसा होते छे और कम होए के नामे चुने लेते। ता तुमन का सलाह दे है गंगाला और पंचायत या फिर मितानिन दीदी मन के मदद ले है पा कहा कि नहीं कहा?
ये सब तो गंगा पहले ही कर चुके रहीस।
हाँ।
मैं हाँ ओला सखी वन स्टाफ सेंटर में जाए के सलाह दिए हूँ।
अच्छा।
पीछू के एपिसोड में बताए रहे ना कि कैसे एक ठन महिला अपन घरेलू हिंसा के केस दर्ज करा सकत है। सखी वन स्टाफ की जानकारी के लिए सीधा चलते हैं अपन सखी सेंटर के कोऑर्डिनेटर पास और ओखर से जानते हैं कि कैसे सखी सेंटर महिला के मदद कर सकत है।
नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हिंसा कोनो और आप हैं मीनाक्षी पांडे संचालिका सखी वन स्टॉप सेंटर बिलासपुर। मैडम सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि सखी वन स्टॉप सेंटर है क्या?
सखी वन स्टॉप सेंटर एक आपातकालीन सेवा है जो महिलाओं को 24 घंटे प्रदान की जाती है, इसमें महिलाओं को हम 5 प्रकार की सुविधाएं देते हैं। एक तो आश्रय की सुविधा देते हैं, यदि कोई महिला आपातकालीन स्थिति में, मान लीजिए उसके रहने की व्यवस्था नहीं है, संकटग्रस्त स्थिति में है, उस स्थिति में वो जिस भी निकाय के माध्यम से आती है, जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आती है, सखी द्वारा उसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 दिन की सहायता प्लस जो भी उसके दैनिक उपयोग की सामग्री है वो हम उसको प्रदान करते हैं। दूसरी होती है परामर्श की सहायता। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके की समस्या से ग्रसित है, चाहे वो दैनिक शोषण हो, यदि वो काउंसलिंग चाहती है FIR से पहले, तो भी हम उनको काउंसलिंग की सुविधा देते हैं। जिस भी तरीके की प्रॉब्लम हो, यदि वो चाहेगी कि मुझे सामने वाले पक्ष से बात करना है, तो उसके लिए हम उसको काउंसलिंग की सुविधा भी देते हैं। उसके लिए सखी में एक परामर्शदाता नियुक्त है। तीसरी सुविधा हो गई है पुलिस सहायता। उसमें जो है हम लोग संबंधित थाने के माध्यम से SP या IG के माध्यम से जो भी घटना होती है वो पत्राचार के माध्यम से वहां तक लेकर जाते हैं। यदि थाने के माध्यम से कार्यवाही नहीं हो पाती है तो एक हफ्ते के अंदर पुलिस अधीक्षक और उसके बाद भी नहीं होता तो पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से प्रयास करते हैं कि उस प्रकरण में FIR दर्ज हो। उसके बाद है विधिक सहायता। विधिक सहायता में हम जिला विधिक के माध्यम से उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता में दो तरीके की सहायता, एक तो ये वो अपने प्रकरणों की पैरवी करने के लिए निःशुल्क यदि अधिवक्ता चाहते हैं तो जिला विधिक के माध्यम से हम उनको प्रदान करते हैं, या वो कोई सलाह चाहते हैं, या मान लीजिए रेप विक्टिम है या कोई भी है पीड़ित क्षतिपूर्ति की राशि चाहते हैं, तो वो भी उनकी भी प्रक्रिया जिला विधिक प्राधिकरण के माध्यम से हम उनका करवाते हैं। उसके बाद जो है चिकित्सकीय सहायता, जिसके लिए सखी में एक मेडिकल पर्सनल करके पद है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से उनको जो है प्रतिनियुक्त किया गया है। हम जिला अस्पताल और सिम्स जो दो सरकारी वो हैं उनके माध्यम से ही हम उनको चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराते हैं।
मैडम, सखी सेंटर और सुरक्षा अधिकारी में अंतर क्या होता है?
देखिए, इन दोनों में मेजर डिफरेंस एक ही है। सखी जो है, जैसा कि अभी मैंने इससे पहले सुविधाओं की बात की थी और सभी प्रकरणों की बात की थी, मैंने बात किया था महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं सखी उन सब पर काम करती है, लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफिसर नवा बिहार है वो मात्र जिले में जितने भी घरेलू हिंसा के मात्र प्रकरण होते हैं वो उनको असिस्ट करती है। वो एक्चुअली जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई विक्टिम आई है, वो काउंसलिंग नहीं चाहती, उसकी काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो ये चाहती है कि मुझे घरेलू हिंसा करना है, उसे DIR के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग जो है संरक्षण अधिकारी के माध्यम से जो है DIR करवाते हैं उनका। वो DIR का पूरा फॉर्मेट होता है, उसमें उनको जो है प्रोटेक्शन का आदेश मिलता है, संरक्षण आदेश हो गया, रहने का, वैकल्पिक आवास, भरण पोषण, स्त्री धन जो, और चाहे तो वो बच्चे की कस्टडी जो भी है हम उनको उसमें प्रदान कर देते हैं। तो वो मात्र घरेलू हिंसा पर काम करती है और हम लोग जितने भी तरीके के क्राइम होते हैं उन सब पर काम करते हैं।
सखी सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं?
सखी सेंटर में जो है मैंने आपको बताया काउंसलिंग की सुविधा, पुलिस सहायता जो कि हम थानों के माध्यम से करवाते हैं, हमारे सहयोगी जो हमारे स्टाफ है वो विक्टिम के साथ रहते हैं, प्रकरण न्यायालय में जाने से पूर्व जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सखी उसमें विक्टिम की मदद करती है। प्रकरण जब न्यायालय में प्रक्रियाधीन रहता है तब वो सखी के हस्तक्षेप से बाहर चले जाता है। जब तक वो न्यायालय में नहीं गया है तब तक ही हम उसको इंटरफेरेंस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई विक्टिम है, वो ये कह रही है कि मैडम मेरा भरण पोषण का प्रकरण चल रहा है, आप यहाँ से समझौता करा देंगे क्या, तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, हम नहीं कोई भी एजेंसी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि न्याय प्रक्रिया से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो रहने की सुविधा, काउंसलिंग की सुविधा, पुलिस सहायता, चिकित्सकीय सहायता और विधिक सहायता।
अगर किसी महिला को केस आगे लेकर जाना है तो सखी सेंटर कैसे मदद करता है और महिला कहाँ जा सकती है?
देखिए, महिला को केस आगे लेके जाना है तो उसमें ये है कि सखी सेंटर में आने पर जब वो बताएगी उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें दो ही तीन चीज़ आपको मिलेगी, या तो ये रहता है कि मुझे पुलिस के पास जाना है, या हो सकता है उसको कोई विधिक सहायता, ज़्यादातर हम लोग जिस पर काम करते हैं वो यही दोनों सहायता है जो कि इमरजेंसी में और लोगों को केस आगे बढ़ाना रहता है। यदि विक्टिम आती है तो अगर वो डावरी का केस है तो उसमें काउंसलिंग कंपलसरी है, बिना काउंसलिंग डावरी का केस आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है 498 के लिए संबंधित थाने में पत्राचार करते हैं। यदि वो डायरेक्ट ये बोलती है कि मैम मुझे कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए, तलाक चाहिए, मुझे अधिवक्ता उसके लिए चाहिए, तो हम लोग जिला विधि के माध्यम से उसको अधिवक्ता करवा देते हैं और वो उसके केस की पैरवी करता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी किसी को मेडिकल सहायता चाहिए रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे एक विक्टिम की हम लोगों ने मदद की थी, उसको आँख की समस्या थी, तो उसका आँख का ट्रीटमेंट जो है हमारे मेडिकल जो स्टाफ है उसके द्वारा कराया गया था। तो ये दो तीन चीजें ही हैं जिसमें वो अपनी चीजों को आगे ले जाना चाहती हैं। या तो बेसिकली आप कोर्ट में जा सकते हैं और FIR के बाद भी लास्ट जो स्टेज है वो न्यायालयीन प्रक्रिया का ही रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है पॉक्सो के प्रकरण रहते हैं बच्चों के, तो उसमें हम लोग दो चीजें करते हैं। एक तो 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति को हमें सूचना देनी रहती है, यदि इमरजेंसी है तो हम फोन के माध्यम से भी उनको सूचना देते हैं, और तत्काल घटना कोई भी हो बच्चे के प्रकरण में थाने को सूचित करना अनिवार्य है और बाल कल्याण समिति को सूचित करना अनिवार्य है।
आपसे हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं?
देखिए, मेरा तो हमेशा से एक ही संदेश रहा है। मैं लगभग मुझे ये 7वां साल मेरा चल रहा है सखी सेंटर में, और मैं जहाँ तक देखी हूँ लोगों का क्या नजरिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महिलाओं से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ यदि शुरुआत में जब कोई घटना घटती है तो उसे प्लीज लाइटली ना ले, और कोई भी घटना घटती है तो कम से कम काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप सामने वाले, आपका वो चाहे मित्र हो सकता है, फैमिली का कोई बंदा हो सकता है, या एनीबडी एल्स कोई भी हो सकता है, आप कम से कम यदि किसी भी व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम है तो एक बार कम से कम आप काउंसलिंग करवा के देखें। कभी कभी बात करने से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है। मन में दबा के रखने से और समझौता करने से, कॉम्प्रोमाइज करने से डोमेस्टिक वायलेंस जैसी समस्या कभी भी दूर नहीं होगी। तो पहले अपना महत्व समझें, परिवार को समझाएं, तभी वो, अगर आप अपनी कदर नहीं करेंगे तो लाइफ में कोई आपकी कदर नहीं कर पाएगा। छोटी घटना ही बड़ी घटना का दस्तक होती है, शुरुआत होती है, इसलिए कभी भी आपके साथ कोई घटना घटती है तो कम से कम उसको किसी न किसी एजेंसी के साथ साझा करें, उनके साथ बांटें और कम से कम बातचीत करें, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो और कम से कम ये लगे कि आपके साथ जब कुछ घटा तो आपने एक पहल किया अपनी समस्या को समाधान करने का। और शायद वो एक ऐसा पल या एक क्षण रहता है जब जो आप पे अत्याचार करता है तो कहीं ना कहीं उसको ये फील होता है कि ये चीजें आगे जाके बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो हिंसा को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश का एक अच्छा पहल है। तो इसलिए कभी भी कोई घटना होती है तो उसकी सूचना जरूर किसी एजेंसी को दे, पुलिस को दे। खासकर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो बहुत लोग इसको जितना सामान्य मानते हैं ये अपने आप में उतना जटिल है। यहाँ पे पुलिस बहुत सिंसियर नहीं रहती, घरेलू हिंसा का मामला है करके वो भेज देती है, लेकिन ये वास्तव में एक ऐसी स्थिति है। मैंने महिलाओं को सामान्य से मानसिक स्थिति में भी जाते देखा हूँ मेरे आंखों के सामने, और सिर्फ ये किस लिए होता है, सहन करो, कॉम्प्रोमाइज करो, चीज़ें ठीक हो जाएगी। चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती है, चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। तो प्लीज़ हिंसा को मत सहिए, कोई भी चीज़ होती है तो आप कम से कम सखी नहीं, कोई भी एजेंसी हो जो आपको लगता है कि आपके विश्वास पर खरी उतरेगी, वहां जाके आप अपनी चीजों को जरूर साझा करें।
अब तो मोला बहुत कन समझ में आ गए कि अगर कोनो महिला के ऊपर हिंसा होते ता ओला कहां जाना चाहिए और कैसे सखी सेंटर, सुरक्षा अधिकारी, पुलिस और DLSA के मदद ले सकते। लेकिन क्या ये सेंटर में कोनो भी प्रकार के महिला जा सकते?
हाँ, ये सेंटर में कोनो भी तरह की हिंसा झेल रहे महिला, बलात्कार, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक विक्टिम, विच हंटिंग, दहेज संबंधित हिंसा, सती, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसे कोनो भी मामला हो तो पीड़ित महिला यहाँ जा सकत है। वन स्टॉप सेंटर के उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थान मा, परिवार समुदाय के भीतर और कामकाज के जगह में हिंसा से प्रभावित महिला मन के सहायता करने इस तो हवे। उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति पर ध्यान दिए बिना शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करे वाले महिला मन के समर्थन और निवारण के सुविधा दिए जाते यहाँ। यौन उत्पीड़न के प्रयास, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तस्करी, सम्मान संबंधी अपराधों, एसिड अटैक या फिर वो टोनही प्रताड़ना, ये सब के कारण कोनो प्रकार के हिंसा का सामना करे वाले पीड़ित महिला को विशेष सेवाएं प्रदान किए जाते वन स्टॉप सेंटर में। और ये पीड़ित महिला 5-6 दिन तक अपन 8 साल के छोटे बेटे और बेटी संग यहाँ रह भी सकत हे।
अच्छा, और एकर साथ साथ सुनवाई मले एक ठन और बात बताथो के सखी सेंटर के साथ साथ पीड़ित महिला हा पुलिस के सहायता घलोक ले सकत हे। अगर कोनो भी महिला हा काफी लंबा समय ले हिंसा ले जूझा थे तो ओहा सीधा पुलिस स्टेशन जाके अपन शिकायत दर्ज करवा सकत हे। अगर महिला के संग ओखर पति या पति के घर वाला मन क्रूरता करते तब महिला हा पुलिस स्टेशन में जाके सेक्शन 498A यानी 498A इंडियन पिनल कोड IPC के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं। फिर पुलिस ला घरेलू हिंसा ले महिला मन के संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार DIR यानी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भरे भर सुरक्षा अधिकारी या सर्विस प्रोवाइडर ला कही सकत है।
पीड़ित महिला के लगातार हिंसा झेलन के का कारण है उसको ए बात का ज्ञान नहीं होना कि आखिर वो मदद के लिए कौन पास जाए कौन डहर जाए। तो महिला बिना कुछ कहे हिंसा झेलत रही थे और तमाम जुल्मों को सहते रहते। खुशी की बात तो ये है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अंडर द प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि एक नियम है तो एक्ट है 2005 जौन मा अन्य सेवा प्रदाता और सुरक्षा अधिकारी प्रोटेक्शन अधिकारी रही थे महिला मन के सुरक्षा पर हर वक्त उपस्थित रही थे।
अच्छा,
और ए अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय खुद ओखर तरफ ले कोनो दूसर आदमी घरेलू हिंसा के घटना के जानकारी संरक्षण अधिकारी नहीं तो सेवा प्रदाता ला ईमेल और टेलीफोन द्वारा भी दे सकत है। ए दिन हो या रात कोनो समय किए जा सकत है। सुरक्षा अधिकारी या फिर ये जो सेवा प्रदाता अधिकारी होते ना तब वो स्थान पर जाते जहाँ पर घटना हुए है और घरेलू घटना रिपोर्ट को दर्ज कराते और एक तुरंत बाद एक घरेलू घटना ला कोर्ट में पेश करते मजिस्ट्रेट ला रिपोर्ट करते काबर के कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महिला सुरक्षित है और हिंसा बंद हो गए है। ऐसे आपातकालीन स्थिति में महिला मन के सहायता और सुरक्षा पर और ओला डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दर्ज कराए बर ओखर पास जाए के जरूरत नहीं है।
अच्छा, तो संगवारी हो आशा करत हन के आज के एपिसोड मा आप सब जन ला सखी सेंटर सुरक्षा अधिकारी पुलिस और DLSA के भूमिका मन के बारे मा बहुत कुछ जाने बर मिलत होगी।
तो संगवारी मन अगर आप मन के कोनो करीबी या परिचित वाले कोई महिला के ऊपर हिंसा होत है तो आपको पता है ओमनला का सलाह देना है या ओमनला कहाँ जाए बर कहना है।
और अगर ए एपिसोड सुने के बाद या सुने के पहले आप मन कोनो भी महिला के हिंसा ले निकले में मदद करे हा तो ओ कहानी ला आप मन ला पहुँचाना है हमर रेडियो स्टेशन तक। आओ कैसे पहुँचा हा ता आप मन व्हाट्सएप कर सका था हमर अर्पा रेडियो के नंबर मा। आओ अर्पा रेडियो के व्हाट्सएप नंबर तो याद हो गए हो ही आप मन ला
9179132444।
एक हर साथे साथ आप मन मेल खलक कर सका था अर्पा रेडियो के ईमेल आईडी मा।
ईमेल आईडी का है बताओ?
हाँ,
अर्पा रेडियो ARPAARADIO@gmail.com।
आप मन के एक कहानी ला हमन अपन रेडियो के माध्यम ले औ सब श्रोता मन करा पहुंचाबो ताकि आपके कहानी ले और दूसर मनखे मन प्रेरित हो सके
और तोहर कहानी के संग गोपनीयता घलो बरतबो।
हाँ हाँ,
तो चलो संगी मन अब समय हो गए है आप मन से विदा कहे बर। अगर आप मन ला कोनो सवाल है को तो हमन से फोन करके पूछ सकत हो और अगर कोनो महिला को हिंसा में रोके के मदद चाहत हो आप मन तो आप कौन से नंबर में फोन करबो 181 या फिर 112।
तो रखा अपन और अपन आसपास के ध्यान और देवा हमन ला इजाजत। जय जोहार,
राम राम।
और कहा
हिंसा को नोम।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।